Om Shanti. बाबा ने हम बच्चों को पवित्रता का ऐसा व्रत दिलाया जो 1936 से लेकर इसकी क्रांति शुरू हुई और आज भी यज्ञ में उतनी ही पवित्रता की बात को महत्व दिया जाता है और प्यूरिटी के आधार से ही हमारे जीवन में रॉयल्टी रियल्टी सर्व दैवी गुण आ जाते हैं। लेकिन उस प्यूरिटी के अर्थ की गुह्य परिभाषा क्या है ये सभी जानते हैं लेकिन नंबरवार है, तो आज हम आदरणीय सविता बहन जी से सुनेंगे प्यूरिटी की पर्सनालिटी और रॉयल्टी इस विषय पर। उन्होंने अपने जीवन में खुद में इतनी ऊंची प्यूरिटी धारण की और जो बाबा के इस महायज्ञ में पिछले 25 वर्ष से सेवाएं दे रहे हैं, उनको इतना बड़ा परम सौभाग्य मिला जो पवित्रता की देवी आदरणीय दादी प्रकाशमणि जी के सेवा का भाग्य मिला, तो आप इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी प्यूरिटी की रॉयल्टी, कितनी उच्चतम प्यूरिटी की पर्सनालिटी उनकी हो सकती है। तो पिछले 35 वर्ष से ज्ञान प्राप्त हुआ है, 25 वर्ष से महायज्ञ में सेवाएं दे रहे हैं और हमेशा हर तन में हम उनसे लाभान्वित होते रहते हैं, उनका क्लास तो हमको मिलता ही रहता है। तो ऐसे सविता बहन जी से सुनेंगे प्यूरिटी की पर्सनालिटी रॉयल्टी इस विषय पर। ओम शांति।
ओम शांति। ब्राह्मण जीवन का आधार कहो या ब्राह्मण जीवन की विशेषता कहो, वो पवित्रता है। बाबा ने कहा यही इस ज्ञान की नवीनता भी है। और किसी सत्संग में जाते हैं तो कभी कोई जीवन को पवित्र बनाने के बारे में इस तरह से नहीं कहते हैं, लेकिन ब्राह्मण जीवन शुरू होते ही हम बाबा के बच्चे इस नियम में बहुत सहज रूप से और नेचुरल रूप से आ जाते हैं। उसके दो आधार हैं। बाबा ने जो हमें ज्ञान दिया, जो हमें स्मृति दिलाई, उससे हमारे में ये सामर्थ्य आ गई। दुनिया में लोग इसको असंभव समझते हैं क्योंकि देह अभिमान में रहते हैं, तो जब देह अभिमान में रहते हैं तो देह से परे भी कुछ हो सकता है ऐसा उनके मन चित्त में नहीं होता। लेकिन बाबा ने हमें पहले ज्ञान दिया, मैं आत्मा हूं, इस शरीर को चलाने वाली चेतन शक्ति आत्मा शक्ति है। ये शरीर तो विनाशी है, आत्मा अविनाशी है। और दूसरा, सिर्फ ये ज्ञान नहीं दिया कि मैं आत्मा हूं, लेकिन ये भी ज्ञान दिया कि मेरा स्वभाव, मेरा मूल स्वभाव पवित्रता है। मैं शुद्ध और पवित्र आत्मा हूं। तो सिर्फ अभी नहीं लेकिन आदि अनादि दोनों स्वरूप में मैं पवित्र आत्मा हूं। जब परम धाम में थी तभी भी संपूर्ण पवित्र थी और फिर जब धरती पर आई, सत्ययुग से जब शुरू हुए तो अनेक जन्मों तक, 21 जन्मों तक तन और मन से पवित्र रहे, देवी देवता थे। तो ये स्मृति आते ही हमारे लिए पवित्र रहना आसान हो गया कि मैं वही पवित्र आत्मा हूं जो जन्म जन्मांतर पवित्र रही है। तो हम ये नहीं कहते असंभव है, हमारे लिए ये सहज संभव। फिर बाबा ने कहा हिम्मत दे बच्चे मददे बाप, हमने हिम्मत रखी और बाबा की मदद भी हमें मिली। भले ही कई बार कई भाई बहने जब ज्ञान में चलते हैं तो थोड़ा संघर्ष होता है, एक युगल में एक ज्ञान में चला दूसरा ज्ञान में नहीं चला तो थोड़ा विघ्न थोड़ा संघर्ष, लेकिन जितना योग बल से उस पवित्रता की शक्ति से हम आगे बढ़ते हैं हमारे वो बंधन भी बाबा सहज काट देते हैं, वो रास्ता बन जाता है। तो पवित्रता फिर बाबा केवल ब्रह्मचर्य तक सीमित नहीं रखते। बाबा कहते हैं ब्रह्मचारी तो दुनिया में भी लोग रहते हैं, कई अज्ञानी आत्माएं भी और आजकल के जो सन्यासी कहलाने वाले हैं, भले ही वो अपने फॉलोवर्स को ब्रह्मचर्य पालन करने के लिए नहीं कहते, लेकिन खुद की शक्ति उस संस्था को चलाने की वो तभी होती है उनमें जब वो खुद ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं। तो वो खुद करते हैं और कई जो विशेष दुनिया में ऐसी आत्माएं होती हैं जो इसके महत्व को समझते हैं, कई भक्त भी अपनी स्वेच्छा से ब्रह्मचर्य का पालन करते हैं, लेकिन वो डायरेक्ट परमात्मा की श्रीमत से पवित्रता नहीं है। तो बाबा ने हमें कहा कि आप बच्चों की जो पवित्रता है वो पवित्रता विशेषता पवित्रता रॉयल्टी वाली है, रियलिटी वाली है, क्योंकि डायरेक्ट परमात्मा श्रीमत से वो पवित्रता है। तो पवित्रता माना ब्रह्मचारी होना, सिर्फ ब्रह्मचर्य का पालन करना नहीं लेकिन ब्रह्मा बाबा के आचरण पर चलने वाला। जैसे ब्रह्मा बाबा ने संकल्प किए बोल बोले कर्म किए, ऐसे ही मेरे भी संकल्प बोल और कर्म होने चाहिए, यानी फॉलो फादर करना। ब्रह्मा बाबा ने जैसे कदम उठाए ब्राह्मण जीवन में वैसे ही मेरे कदम हो। उससे भी आगे बाबा कहता है, हैं भले हम सभी नंबर वार, हम सबकी प्यूरिटी की स्टेज में हम पुरुषार्थी हैं, लेकिन जो बाबा 100% संपूर्ण पवित्रता की बात कहते हैं, अगर हम उस संपूर्ण पवित्रता को समझें तो फिर बाबा ये भी कहता है संपूर्ण निर्विकारी होना ही संपूर्ण पवित्रता है, कोई भी विकार का अंश वंश भी ना हो। मोटे रूप में तो हमारे विकार छूट जाते हैं जब हम ब्राह्मण बनते हैं, तो काम क्रोध लोभ मोह अहंकार उस रूप में नहीं रहते, लेकिन उनके जो सूक्ष्म रूप हैं, विकारों के जो सूक्ष्म रूप हैं, जैसे काम विकार का सूक्ष्म रूप है लगाव चुकाव में होना, या किसी पर प्रभावित हो जाना, किसी के साथ फैमिलियरिटी में आना, एक्स्ट्रा स्नेह जिसको बाबा कहता है, किसी भी आत्मा से एक्स्ट्रा स्नेह अगर हम रखते हैं, है तो सभी से है, सभी अपना परिवार है, लेकिन अगर थोड़ा भी ज्यादा होता है तो उसको बाबा कहता है अंश वंश है। और वो कब विकार का रूप ले लेगा, पूरा माया का रूप ले लेगा, समझ नहीं सकते। फिर क्रोध के लिए बाबा कहते हैं ईर्ष्या यदि हम किसी से करते हैं या किसी के प्रति नफरत की भावना आ जाती है, थोड़ा रौब रखते हैं, जोश में आ जाते हैं, तो वो भी क्रोध विकार का अंश वंश है, वो भी अपवित्रता है। फिर लोभ के लिए है ना, आवश्यकता से ज्यादा थोड़ा भी, आवश्यकता की तो लिमिट होती है, लेकिन ये अच्छा लगता है, ये भी होना चाहिए, तो जहां चाहिए चाहिए है वहां वो लोभ का अंश है। ऐसे ही मोह और अहंकार, अहंकार के लिए कहेंगे क्या कहेंगे, मैंपन और मेरापन। तो वैसे हमने कहा सब कुछ बाबा तेरा, लेकिन अगर फिर भी हम सोचते हैं नहीं बाबा मेरा है, उसके साथ साथ थोड़ा और भी मेरा होना चाहिए, मतलब कोई तो साथी चाहिए, किसी को तो हम दिल की बात कह सकें, कोई तो ऐसा अपना होना चाहिए ना। मोह कैसे होता है, जब हम किसी से बहुत ज्यादा अपनापन रखते हैं और फिर उसके दुख में दुखी, उसके सुख में हम सुखी होते हैं। तो ये अंश वंश की बात है। तो जहां भी विकार की बात आती है बाबा उसको अपवित्रता कहते हैं। तो इन सब में हम पुरुषार्थी हैं और अपनी अपनी रीति से हम पूरी कोशिश करते हैं कि हम अपनी इन कमियों को दूर करके अपनी संपूर्ण पवित्रता की स्थिति को प्राप्त करें। फिर इसके आगे बाबा कहता है कि अगर स्वप्न में भी किसी विकार के वश कर्म होता है, कार्य व्यवहार में बात अलग है, लेकिन स्वप्न में भी अगर होता है तो भी संपूर्ण पवित्रता नहीं है। स्वप्न में भी अगर किसी आत्मा के प्रति हम क्रोध करते हैं या स्वप्न में भी ईर्ष्या की भावना किसी के प्रति पैदा हो रही है तो भी वो पर, क्योंकि सब कॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं अभी भी उस विकार का प्रभाव है, तभी तो हम इसे सपने के रूप में देख रहे हैं। फिर बाबा उससे भी आगे कहते हैं कि सारे दिन की दिनचर्या में अगर कहीं आलस्य अलबेलापन आता है, आलस्य भी छठा विकार है उसको कहा गया, तो एक्यूरेट अगर दिनचर्या नहीं है, अमृत वेले से रात तक जिस विधि पूर्वक बाबा ने हमें कहा, बाबा के श्रीमत अनुसार जैसे अमृत वेला होना चाहिए, जैसे हमको मुरली सुनना चाहिए, जैसे हमें सारे दिन कर्म करने चाहिए ट्रस्टी भाव से, निमित भाव से, सेवाधारी भाव से, और रात को सोने से पहले अपना पूरा चार्ट बाबा के सामने देना और विधि पूर्वक सोना, इसमें अगर कहीं भी अलबेलापन है तो भी वो संपूर्ण पवित्रता नहीं है। तो हम अपने आप को चेक कर सकते हैं कि वो प्यूरिटी की पर्सनालिटी हमें तब दिखाई देगी जब हम पवित्रता की धारणा में पक्के हैं, सर्व प्रकार की पवित्रता में। पर्सनालिटी माना विशेषता, और बाबा कहता है वो सूरत और सीरत से प्रकट होती है, ऐसे नहीं कि हम गुप्त हैं उसमें। जैसे हीरे को आप कभी छुपा नहीं सकते, जहां भी रखेंगे वो चमकेगा जरूर, क्योंकि वो उसकी विशेषता है। तो अगर प्यूरिटी मन वचन कर्म में है तो वो दिखाई देगी, वो रूहानियत की पर्सनालिटी हमारे चेहरे से, सूरत से और सीरत से स्पष्ट होगी। जैसे ब्रह्मा बाबा थे, आज हमारी दादियां हैं या जो भी हमारे वरिष्ठ हैं, भाई बहने, हम देखते हैं उनको, देखते ही उनकी रूहानियत की पर्सनालिटी हमको समझ में आती है। तो ये विशेष आत्माएं हैं। जैसे दुनिया में भी कोई पोजीशन की पर्सनालिटी होती है या कोई शारीरिक पर्सनालिटी होती है, अनेक प्रकार की पर्सनालिटी है दुनिया में जिनको लोग मानते भी हैं और उनको जानते भी हैं। तो जैसे शारीरिक सुंदरता में लोग क्या करते हैं, आजकल कंपटीशन करते हैं, मिस वर्ल्ड का करेंगे, मिस यूनिवर्स का करेंगे, फिर उसमें जो विजेता होते हैं वो पूरे संसार में उनका नाम हो जाता है, वो पर्सनालिटी बन जाते हैं। ऐसे ही पोजीशन में कोई प्राइम मिनिस्टर बने, प्रेसिडेंट बने, मिनिस्टर बने, तो और कोई बड़ी पोस्ट, ऐसी पोस्ट वाले होते हैं, वो भी पर्सनालिटी माने जाते हैं। या फिर कोई खेल में, किसी भी फील्ड में जो विशेष होते हैं वो पर्सनालिटी माने जाते हैं। बाबा कहते हैं ब्राह्मण आत्माएं उस तरह की पर्सनालिटी नहीं है, देखने में हम सभी साधारण लगते हैं, लेकिन जो प्यूरिटी की और रूहानियत की पर्सनालिटी है वो ब्राह्मण आत्माओं जैसी दुनिया में कितने भी ऊंचे पोजीशन वाले हों, कैसी भी पर्सनालिटी वाले हों, हो सकती है, नहीं हो सकती। अच्छा, मुझे लगा कि वो ट्रैफिक कंट्रोल का गीत शुरू हो रहा है।
घड़ी।
तो बाबा हमें कहते हैं कि प्यूरिटी के कारण जो ब्राह्मण आत्माएं हैं वो पूरे कल्प में विशेष पर्सनालिटी रहे हैं, फिर चाहे वो अनादि रूप में हैं, आदि रूप में हैं, मध्य में जब द्वापर में आए, तब अगर हम परमधाम में देखते हैं तो ब्राह्मण आत्माएं परमधाम में शिव बाबा के सबसे समीप सबसे ज्यादा चमक वाली आत्माएं हैं। पवित्रता के कारण जो ब्राह्मण आत्माओं की चमक है वो न्यारी है। जैसे आसमान में हम सितारे देखते हैं, हमारी नजर ज्यादा उस सितारे की तरफ जाएगी जो ज्यादा चमक रहा है। बहुत सितारे हैं आसमान में लेकिन सबकी तरफ हमारी नजर नहीं जाती है। आकर्षित कौन से करते हैं? जो विशेष चमक रहे होते हैं। तो बाबा कहते हैं परम धाम में आत्मा भी तो सितारा स्वरूप है ना, तो परम धाम में आप आत्माएं इस तरह की चमक वाली आत्माएं हैं जो विशेष बाबा के समीप हैं। फिर जब आदि स्वरूप में देवात्मा स्वरूप में आते हैं तो भी सभी प्रकार की पर्सनालिटी है, तन की भी, देवताएं तन से भी पवित्र हैं, मन से भी पवित्र हैं, और इसीलिए तन और मन दोनों ही सुंदर हैं, नेचुरल ब्यूटी रहती है वहां पर। डबल ताजधारी हैं, सर्व प्राप्ति संपन्न है, प्रकृति दासी स्वरूप में है, तो वो पवित्रता पूरे दो युगों तक चलती है आत्मा की। तो उस रूप में भी रॉयल श्रेष्ठ आत्माएं हैं, सर्वश्रेष्ठ संसार की पूज्य आत्माएं हैं। फिर जब द्वापर युग में आते हैं तो द्वापर युग में अब भले पूज्य नहीं रहते हैं, पुजारी बन जाते हैं, लेकिन जिस पूज्य स्वरूप की पूजा करते हैं वो पूज्य स्वरूप की देवी देवताओं की जो पूजा होती है वो सबसे ज्यादा विधि पूर्वक पूजा होती है। जितने भी संसार में धर्म पिताएं हुए, उसके बाद महात्माएं हुए या राजनेताएं हुए या अभिनेताएं हुए, वही जिन्हें विशेष पर्सनालिटी हमें कहेंगे, तो भले ही धर्म पिताओं की पूजा होती है लेकिन देवी देवताओं जैसे विधि पूर्वक ना उनका श्रृंगार होता है, हर कर्म के पहले उनका विशेष श्रृंगार होगा, कितने सजे सजाए रूप में उनको रखते हैं, फिर हर कर्म के दर्शन होते हैं, हर कर्म की आरती होती है, सुबह से लेकर रात तक जो पूजा होती है वो साजों और बाजों से, बाबा कहता है विशेष कीर्तन करते हैं, उनकी कीर्ति गाते हैं। और किसी भी धर्म में चले जाओ आप, इस तरह की पूजा की विधि नहीं है, तो भी विशेष हो गए। पूज्य रूप में जब आए द्वापर युग में तभी भी विशेष रूप से पूजा होती है, और फिर अभी वर्तमान संगम युग में भी ब्राह्मण रूप में भी विश्व की अन्य आत्माओं की तुलना में पुरुषोत्तम आत्माएं हैं, सच्चे ब्राह्मण हैं। भले ही लोग जन्म से ब्राह्मण होंगे लेकिन कर्म से ब्राह्मण नहीं है, आज के ब्राह्मण कर्म से ब्राह्मण नहीं है, और हम बाबा के बच्चे भले जन्म से ब्राह्मण नहीं है लेकिन कर्म से बिल्कुल नामधारी ब्राह्मण नहीं है लेकिन सच्चे ब्राह्मण हैं। तो बाबा कहता है जो सच्चे ब्राह्मण हैं उनकी महिमा कितनी होगी, जो कि आज नामधारी ब्राह्मण भी ब्राह्मण के नाम से ही अपना जीविका चलाते हैं, आज भी अपना वो काम चला रहे हैं। तो ऐसे पुरुषोत्तम ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं। फिर तो फरिश्ता बनना ये भी अपने आप में विशेष उपलब्धि है कि ब्राह्मण सो फरिश्ता बनते हैं और फिर उसके बाद मुक्ति और जीवन मुक्ति का वर्षा आत्मा को मिलता है। तो पूरे कल्प में हम पर्सनालिटी वाली आत्माएं रही प्यूरिटी के कारण, सिर्फ एक एक प्यूरिटी की जो धारणा है वो सारे कल्प में आत्मा को विशेष बना देती है। फिर बाबा कहता है प्यूरिटी रियलिटी भी है, अलग अलग स्टेप्स हैं। तो प्यूरिटी माना सच्चाई और सफाई, दुनिया में लोग प्यूरिटी का यही मतलब निकालते हैं, ऑनेस्टी से रहना, ईमानदारी से रहना, सच्चाई सफाई से रहना। तो सच्चाई सफाई भी बाहर की भी और अंदर की भी। अंदर जो है वही बाहर में हूं, जो हम सोचते हैं वही बोलते हैं और करते हैं, यानी मन वचन कर्म एक हो, इसको हम सच्चाई कहेंगे। ऐसे नहीं सोचते हम कुछ और हैं और करते हम कुछ और हैं। कई बार जब हम दूसरों के व्यवहार में आते हैं तो भी ऐसा होता है, जिसको हम कहते हैं धोखा देना। हाँ, किसी के सामने हम जो कह रहे हैं वो तो हम उसकी तारीफ के शब्द कह रहे हैं, लेकिन जैसे ही वो व्यक्ति हमारे सामने से जाता है, कोई दूसरा आता है उसके सामने, हम उसकी बुराई करने लगते हैं। तो जो हमने उसके बारे में कहा वो झूठ कहा। बाबा क्या कहता है, बाबा कहता है ईश्वर सत्य है। हम कहते हैं गॉड इज ट्रूथ, यानी सत्यम शिवम सुंदरम। शिव बाबा सत्य है और सत्य ज्ञान से सत्ययुग लाने वाला है, सत्य का युग लाने वाला है। वो सत बाप है, सत शिक्षक है और सत गुरु है। और कहते हैं सच्चे दिल पर साहब राजी। वो राजी तब होता है जब हमारी दिल सच्ची है, यानी सच्चाई सफाई वाली है। तो सत्य बाप को सत्य ही पसंद है, लेकिन हम क्या सोचते हैं, आज की जो दुनिया है वो तो झूठ खंड है, झूठ खंड है ना कलयुग। तो इसीलिए कहते हैं झूठी माया झूठी काया झूठा सब संसार। बिना झूठ के तो आप एक कदम भी नहीं उठा सकते इस दुनिया में, बिना झूठ के तो काम ही नहीं चलता है। क्या कहेंगे, काम चलता है नहीं चलता है? बिजनेस करने जाते हैं, बिना झूठ के तो बिजनेस होता नहीं। आज की दुनिया में लोग कैसे कैसे हैं, अपने को बचाने के लिए हम कदम कदम पर झूठ बोलते हैं। मैंने कुछ गलती की, अब मैं अपनी गलती बताना नहीं चाहती, अगर मैंने अपनी गलती बता दी तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे, मेरा नाम खराब हो जाएगा। हम फटाफट अपने को बचाने के लिए क्या करते हैं, झूठ बोल देते हैं। और सिर्फ झूठ ही नहीं बोलते, कई बार दूसरों के ऊपर इल्जाम भी लगाते हैं। अपने को बचाने के लिए अगर किसी दूसरे पर गलत इल्जाम लगाना पड़े तो उससे भी पीछे नहीं हटते, चाहे दूसरे को दुख पहुंचाए, उस कष्ट दे, उससे मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं बचनी चाहिए जो भी है। तो अगर हम ऐसी हेरा फेरी करते हैं ब्राह्मण बनने के बाद, दुनिया में तो लोग करते हैं, वो तो कोई बड़ी बात नहीं है, ये आज के जमाने में तो लोग अधिकार से करते हैं ये सब चीजें, लेकिन बाबा के बच्चे बनने के बाद भी अगर हम अपने स्वार्थ के लिए ऐसा करते हैं तो बाबा कहता है एक का सौ गुना। चलो उस समय के लिए मैंने अपना नाम बचा लिया या अपने आप को बचा लिया, उस समय के लिए मेरी जीत हो गई, हम खुश हो गए हो कि देखो हमने झूठ का सहारा लिया ना, तो देखो बच गए। बाबा कहता है अल्प काल की खुशी, लेकिन सदा काल के लिए आपने अपनी कमाई गंवा दी। और बाप के बाप से भी किनारा कर लिया, क्योंकि बाबा को तो असत्य पसंद ही नहीं है, तो बाबा के दिल पर तो नहीं चढ़ सकते। और सच का सहारा लिया तो क्या होगा, उस समय आपको लगेगा हम हार गए। कई बार जो सच का सहारा लेता है उसे थोड़ा दुखी भी होना पड़ता है, उसे थोड़ा सहन भी करना पड़ता है, लेकिन सदा काल की जीत हो जाती है। यानी बाबा के दिल पर आप चढ़ते हैं, बाबा की दुआएं मिलती हैं और अविनाशी कमाई आपकी जमा हो जाती है। और सत्य बाबा कहता है सत्य को सिद्ध करने की जरूरत नहीं होती। कई बार हम सोचते हैं मैं सच्ची हूं तो फिर हम अपनी बात को थोड़ा सिद्ध करते हैं, कई बार उसके कारण जोश में भी आ जाते हैं। तो बाबा कहते हैं कि सत्य को स्वयं प्रकट होने की या स्वयं को सिद्ध होने की शक्ति प्राप्त है, उसमें कई बार थोड़ा समय लग सकता है, जिसे हम कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं है, या सत्य की नाव हिलेगी डुलेगी लेकिन डूबेगी नहीं डूबेगी। बाबा का ज्ञान सत्य ज्ञान है, इसीलिए आज तक इस यज्ञ में कितने विघ्न आते रहे होंगे, हाँ कितने लोगों ने इसे हिलाने की कोशिश की होगी या जो भी, लेकिन कभी भी नहीं कर पाए। सदा अचल रहा बाबा का कार्य, क्योंकि सत्य के आधार पर है। तो ये सत्यता की विशेषता है। और बाबा कहता है सत्यता को बादल ढक सकते हैं, जैसे सूर्य को बादल ढक सकते हैं थोड़ा समय के लिए, लेकिन फिर भी सूर्य का चमक कम नहीं होती है। तो ऐसे ही सत्यता की शक्ति है और वो सत्यता की महानता है। तो ऐसे नहीं कि हम झूठ का आधार लें। अगर हम बाबा के श्रीमत का उल्लंघन करते हैं, मानो हो जाता है हमसे, तो हम बाबा को भी सच सच सुना दें। इसीलिए चार्ट देने की विधि रखी है कि अगर मैंने बाबा को सच सुनाया तो फिर मेरा आधा वही माफ हो जाता है और बाकी के लिए बाबा हमें शक्ति दे देते हैं कि आगे के लिए हम उस धारणा को अपने जीवन में कर पाते हैं। पर एक जगह बाबा हमें झूठ की परमिशन देते हैं, ऐसा नहीं कहेंगे, लेकिन हम उसे युक्ति कह सकते हैं। मानो आपके घर वाले ज्ञान में नहीं चलते, अगर किसी के कल्याण के लिए, मानो आपको मधुबन में आना है, आपको बहुत बंधन है, आप नहीं आ सकते हो, तो आप कहते हैं घर में अगर सच बताएंगे कि मुझे मधुबन जाना है तो बहुत कलह हो जाएगा या बहुत स्थिति ऐसी हो जाए कि आपको बिल्कुल ही ना आने दें, तो फिर लोग क्या करते हैं, मैं अपनी माँ के घर जा रही हूँ या कहीं नौकरी करते हैं तो मुझे वहां जाना है नौकरी के काम से, लेकिन वहां नहीं जाते, कहां जाते हैं, मधुबन आ गए। तो इसको है तो झूठ, देखते में तो झूठी लग रहा है ना कि उनके सामने तो हमने झूठ बोला, लेकिन क्योंकि इसमें कल्याण है, आत्मा का कल्याण है। तो बाबा कहता है जो स्वार्थ भाव से नहीं लेकिन कल्याण के भाव से कहा गया या किया गया वो पाप नहीं होता है, वो तो फिर पुण्य के खाते में भी जमा हो सकता है। मानो आप किसी दूसरे के लिए भी ऐसा करते हैं, किसी दूसरी आत्मा का कल्याण हो, उसके लिए हमें जो हम बताते हैं कि एक बार एक कसाई के सामने से गाय गई, कसाई मारने जा रहा था और किसी साधु के सामने से वो गाय भागी, तो जब कसाई ने पूछा तो उसने कहा मुझे नहीं पता कहाँ गई। तो गाय का जीवन बचाने के लिए, ऐसा नहीं कि उसने नहीं देखा, लेकिन जीवन बचाने के लिए उसने ऐसा कहा। तो ऐसे ही अगर हम निस्वार्थ भाव से कल्याण के प्रति कोई ऐसा युक्ति करते हैं या सहारा आधार लेते हैं तो फिर वो पाप नहीं है। जैसे समय स्थान और भाव के अनुसार से कर्म की परिभाषा बदलती है। कहेंगे जैसे कि सैनिक है, वो अगर वहां खड़ा है, बॉर्डर पर खड़ा है, और हम कहें कि गोली चलाना पाप है और दुश्मन आ जाए और गोली नहीं चलाए तो दुश्मन उस पर गोली चला देगा, तो यहां पर गोली न चलाना गोली चलाने से ज्यादा पाप हो जाएगा, ऐसे कहेंगे। तो किस स्थिति में किस भाव से वो कर्म हो रहा है उससे उसका परिणाम बदल जाता है। तो यहां भी झूठ की जो बात है वो इस रीति से अगर हम कल्याण के भाव से करते हैं तो बाबा उसको कहते हैं युक्ति युक्त तरह से हमने चलाया, उस बात को चलाया, लेकिन युक्ति को फिर हम हेरा फेरी में परिवर्तन ना करें। फिर बाबा कहते हैं जो आत्माएं रॉयल्टी वाली हैं, प्यूरिटी की रॉयल्टी वाली हैं, तो कहेंगे सच तो बिठो नच। सच्चाई का परिणाम क्या होता है, सदा हर्षित रहेंगे, सदा निर्भय रहेंगे, उनको किसी भी बात का भय नहीं होगा। झूठ होगा तो थोड़ा बहुत भय जरूर होगा मन में, लेकिन सदा ही हर्षित चित्त और आकर्षित मूर्त होंगे। फिर हर्षित केवल बाहर के नहीं ना, बाहर से कई बार दिखाने के लिए भी लोग खुश होते हैं, अंदर से खुश नहीं होते, लेकिन बाहर से तो कई बार ना हम नहीं दिखाना चाहते कि हम अंदर से दुखी हैं या खुश नहीं हैं, तो हंस देते हैं, लेकिन प्रसन्न चित्त हो तो फिर प्रश्न चित्त नहीं होंगे। और प्रसन्न चित्त कब हो सकते हैं, जब संतुष्ट रहेंगे। संतुष्ट आत्मा सदा स्वयं को सर्व प्राप्ति संपन्न अनुभव करती है। जो बाबा कहता है अप्राप्त नहीं कोई वस्तु ब्राह्मणों के खजाने में या ब्राह्मणों के जीवन में, तो जहां सर्व प्राप्ति संपन्न है, भरपूर है, तो फिर सदा प्रसन्न रह पाते हैं। अगर कहां कोई अप्राप्ति महसूस करते हैं तो फिर प्रसन्नता नहीं रहती है। तो तन मन धन संबंध चारों प्रकार की प्राप्ति हमें ब्राह्मण जीवन में भी है और आने वाले जन्म जन्मांतर तक अनेक जन्मों तक ये सर्व प्राप्तियां हमारे साथ रहेंगी। तन की प्राप्ति में स्वस्थ तन होना चाहिए। तो बाबा हमारी आत्मा को अभी स्वस्थ बना देते हैं तो तन में अगर कोई बीमारी भी आती है तो आत्मा स्वस्थ है इसलिए वो सूली से कांटा लगती है, तन की बीमारी भी ज्यादा अनुभव नहीं कराती। और कर्म भोग को हम कर्म योग से चुकतू कर सकते हैं, बाबा ने हमें वो पूरी विधि बताई है। लोग आज कहते हैं टेंशन से बीमारियां होती हैं, बाबा ने हमें बेफिक्र बादशाह बना दिया। हाँ, हमारे सब टेंशन हम किसको दे देते हैं, सारे फिक्र किसको दिए। हाँ, या अभी भी फिक्र करते हैं बाबा के बच्चे बनने के बाद भी। हाँ, ये फिक्र दुनिया वालों जैसे फिक्र करते हैं। अगर सचमुच तेरा किया है, अपनी सारी जिम्मेवारी बाबा को दी है, पूरी तरह से ट्रस्टी होकर हम बाबा के श्रीमत अनुसार चलते हैं तो हमें चिंता और फिक्र नहीं हो सकता। सचमुच बाबा हमें निश्चिंत जीवन का अनुभव कराते हैं, जिसे कहते हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। कितना बाबा के ऊपर निश्चय है ये उस पर निर्भर करता है। तो तन से हम स्वस्थ रह सकते हैं, बाबा ने वो विधि हमें बता दी है। फिर मन भी स्वस्थ है और मन प्रसन्न भी है, मन शांत भी है, क्योंकि मन मना भव की विधि दी है। मन को किसमें लगाना है, जो खुशियों का सागर बाबा है, जो शांति का सागर बाबा है, तो मन उसमें लगते ही अपने आप शांत हो जाता है। शांति के सागर बाबा से हमें शांति मिलती है। तो मन की प्राप्ति भी है, जब चाहे हम मन को बाबा में लगाएं। बाबा तो कहता है निरंतर योगी बनो, जीवन ही योगी जीवन है। ऐसे नहीं कि सुबह योग किया शाम को योग किया, नहीं, सदा ही बाबा मेरे साथ है, मन सदा ही बाबा में लगा रहे। फिर धन, बाबा ने तो अविनाशी धन दिया है हम बच्चों को, स्थूल धन की विनाशी धन की बात नहीं, वो तो साथ जाने वाला है ही नहीं, वो तो बाबा ने हमें समझा दिया है। तो जो ज्ञान के खजाने, जो गुणों के खजाने, जो शक्तियों के खजाने, जो अविनाशी धन है, उसे हम जितना प्रयोग करेंगे उतना वो बढ़ते जाएंगे। क्योंकि हमारा धन ऐसा है, वो धन खर्च करने से कम होता है, लेकिन हमारा धन ऐसा है जितना यूज करेंगे बढ़ता जाएगा। एक एक ज्ञान रत्न बाबा कहता है लाखों रुपए की वैल्यू का है। नॉलेज इज सोर्स ऑफ इनकम, ज्ञान को भी धन इसीलिए कहा गया। फिर संबंध की प्राप्ति है, तो आज हमारा जो देवी परिवार है, फिर सर्व संबंध हमारे बाबा से हैं। बाबा ही मेरा संसार है ऐसा हम कहते हैं, या एक बाप दूसरा ना कोई, ऐसे भी। और जो पवित्रता की शक्ति है वो इस संबंध के आधार से भी है कि बाबा ने हमें ये सिखाया कि मेरा कंपेनियन और मेरी कंपनी कौन है, एक बाबा है। अगर हम बाबा से सर्व संबंध रखते हैं तो फिर और किसी भी संबंध में मेरी आंख डूबेगी नहीं, मेरी वृत्ति जाएगी नहीं। अगर बाबा से मुझे संबंधों का पूर्ण अनुभव है, और अगर नहीं है, रॉयल आत्माओं की ये भी निशानी होती है, बाबा कहते हैं रॉयल माना रॉयल आत्माओं की कभी भी किसी भी चीज में आंख नहीं डूबती है। आंख नहीं डूबती है माना वो किसी पर आकर्षित या प्रभावित नहीं होते हैं, चाहे वो कोई वस्तु है चाहे वो कोई व्यक्ति है, और उनमें मांगने के संस्कार भी नहीं होंगे। दुनिया में भी जिनको रॉयल कहा जाता है ना, जो रॉयल फैमिली वाले होते हैं या हाई क्लास जिसे हम मानते हैं, पर्सनालिटी वाले लोग होते हैं, उनमें कभी मांगने के संस्कार नहीं होंगे। भले नहीं भी होगा तो भी वो मांगेंगे नहीं। जो मन से भरपूर होते हैं, उनके पास अगर कोई चीज या साधन नहीं भी है तो भी वो नहीं में भी हां का अनुभव करेंगे, यानी वो है मेरे पास। नहीं है तो भी संतुष्ट हैं, और जिनके मन में संतुष्टि नहीं है, मन से भरपूर नहीं है, उनके पास सब कुछ होगा लेकिन फिर भी समझेंगे जैसे ये नहीं है, वो नहीं है, ये भी होना चाहिए, वो भी होना चाहिए, और फिर सिर्फ स्थूल में नहीं सूक्ष्म में भी मांगने के संस्कार होते हैं। सूक्ष्म में मांगने के संस्कार जो कहते हैं नाम चाहिए, मान चाहिए, या प्यार मिलना चाहिए, सम्मान जैसे कहा मिलना चाहिए, तो अगर हम इसकी आशा रखते हैं तो ये भी मांगना है। बाबा कहता है हम दाता के बच्चे देवता देने वाले हैं, मुझे देना है। अगर हम दूसरे को सम्मान देते हैं, हम दूसरे को प्यार देते हैं तो हमें अपने आप मिलेगा, मांगने की बात नहीं है। तो ये रॉयल्टी नहीं है। अगर हम ये सोचते हैं, कई बार लोग सोचते हैं ना पार्शलिटी होती है, इसको ज्यादा पूछते हैं, मुझे तो पूछते ही नहीं है, या जो भी, मतलब हम ऐसे सोचते हैं, इनको ज्यादा सम्मान करते हैं। तो अगर ये संकल्प भी हमारे मन में आते हैं तो हमें ये सोचना चाहिए किसने हमें चुना है, किसने हमें इतना सम्मान दिया। बाबा तो अपने हर बच्चे को कितना प्यार देता है, कितना स्वमान दिया है बाबा ने, लिस्ट इतनी लंबी है ये गिन भी नहीं सकते हैं। तो उसे हम याद करें कि स्वयं भगवान ने जिसे दिया, उसे आत्मा दे या ना दे उससे क्या फर्क पड़ता है। तो जो आत्माओं के पास है ही नहीं वो कैसे देंगे आपको, अगर जिसके अंदर खुद ही प्यार नहीं है वो आपको कैसे दे सकता है। और अगर हम देंगे तो अपने आप हमें मिलेगा। तो ये सोचना ही गलत है, लेकिन सोचना है मुझे देना है। तो मांगने के संस्कार बिल्कुल नहीं, अगर भरपूर होंगे तो ही हम देने वाले दाता बनेंगे, अगर हम कमी महसूस करेंगे तभी हम वो मांगने में चले जाते हैं। फिर बाबा कहता है जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो सभ्यता वाली होती हैं। दुनिया में भी देखो जो रॉयल आत्माएं होती हैं उनके बोल चाल चलन व्यवहार वो बहुत सभ्यता वाला होता है। वो उठेंगे बैठेंगे वो हर बात उनका बहुत विधि पूर्वक होगा, ऐसे नहीं जो आया वो बोल दिया, जैसे चाहे वैसे व्यवहार कर दिया, नहीं। बहुत जैसे बाबा हमें कहते हैं कम बोलो, धीरे बोलो, मीठा बोलो, सोच समझ के बोलो, ये रॉयल्टी है। बहुत अधिक बोलना भी रॉयल्टी नहीं है, और बहुत ऊंचा ऊंचा जोर जोर से बोलना ये भी रॉयल्टी नहीं है। कई बार किसी को कहते हैं तो बोलते हैं कि मेरा तो आवाज ही ऊंचा है, हम गुस्सा नहीं कर रहे हैं लेकिन लेकिन आवाज ही ऊंचा है तो क्या करें। तो बाबा ने एक मुरली में कहा था ये माइक है, इस माइक के वॉल्यूम को कम ज्यादा कर सकते हैं, तो क्या आप अपने मुख के माइक के वॉल्यूम को कम ज्यादा नहीं कर सकते हो, कर सकते नहीं कर सकते क्या कहेंगे, है ना, कर सकते हैं। तो ये हमें याद रखना है कि कभी भी ऐसे नहीं मेरे मुख से ऐसा निकल गया। कंट्रोलिंग पावर, रूलिंग पावर, रूलिंग पावर वही किसके अंदर होगी, जो रॉयल आत्माएं होंगी। जो सोचना है, जो बोलना है, जैसे बोलना है उस विधि पूर्वक, ऐसे नहीं हम तो सच बोलते हैं ना इसलिए थोड़ा जोर से बोल रहे हैं। बाबा ने कहा सत्यता बोलने में भी सभ्यता हो, सच बोले लेकिन मीठा बोले। दुनिया में भी कहते हैं सत्यम बुरियात प्रियम बुरियात ना बुरियात सत्यम अप्रियम, यानी सत्य बोलो लेकिन मधुर सत्य बोलो, ऐसा सत्य मत बोलो जो कड़वा लगे, है ना। तो सत्य को भी किस विधि से कहा गया उसका प्रभाव तब पड़ता है। तो ये जो सत्यता की सभ्यता है ये प्यूरिटी की पर्सनालिटी में आता है। फिर जो रॉयल आत्माएं होती हैं वो न्यारी और प्यारी होती हैं। ऐसे नहीं कि प्यारे हैं तो किसी के अटैचमेंट में आ गए, नहीं। बाबा कहता है न्यारे होकर के प्यारे बनो, यानी आत्मिक स्थिति में रहकर के जब स्नेह में आएंगे तो फिर वो न्यारापन होगा, यानी अव्यक्त भाव से रूहानियत, जिसको हम कहते हैं रूहानियत का स्नेह ही अलग होता है, वो कभी भी अटैचमेंट में नहीं लाएगा, तो उस तरह का न्यारा और प्यारापन आत्माओं में होता है। तो हम सब अपने आप को चेक कर सकते हैं कि बाबा जो पर्सनालिटी हमसे चाहते हैं, जो रॉयल्टी हमसे चाहते हैं, जो भविष्य में हमारे साथ चलने वाली है, क्योंकि यही संस्कार भविष्य में आत्मा के साथ जाने वाले हैं, उसी अनुसार हमें स्टेटस मिलेगा। अगर अभी हमारी 90% 99% प्यूरिटी रॉयल्टी होती है, तो उस अनुसार या तो हमें वो तख्त मिलेगा विश्व महाराजन, या फिर विजयमाला के मन के आते हैं तो राजा महाराजा, और फिर उसके बाद अलग अलग पद हैं सभी को मालूम है, तो उस अनुसार हमें वो प्राप्ति होती है। तो हम अपना पुरुषार्थ देख सकते हैं और उस अनुसार जो हमारी कमी है उसे हम दूर करके अपनी संपूर्ण प्योरिटी को बढ़ाते जाएं। ओम शांति।